आज इस बच्ची का शुभारंभ, यहाँ बाबा के वो बच्चे जो प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहते हैं, कमल आसनधारी फरिश्ता स्वरूप ऐसे युगल मूरत सभी भाई बहनों का फिर से दादी जी के तरफ से और सभी मधुबन निवासियों की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी मैं इस सजे हुए दरबार के अंदर हमारे पधारे हुए आदरणीय दादी जी और नलिनी दीदी जी का स्वागत तिलक और पुष्प गुच्छों से बहनों को निवेदन करती हूँ। आकर के दिव्य मूर्तियों का पुष्प गुच्छ और तिलक लगाकर स्वागत करें। आप सभी भी इस स्वागत की श्रृंखला के अंदर साथ साथ जुड़े रहेंगे और तालियों के साज से दादी जी का सही दिल से पुष्पों के साज से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आदरणीय नलिनी दीदी जी का भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी नलिनी दीदी के साथ साथ पहुंचा है मधुर वाणी ग्रुप, जो आप सबके लिए विशेष स्वागत के लिए शब्दों की माला लेकर के आया है मधुर वाणी ग्रुप। साज और आवाज से आप सभी का स्वागत करेंगे।
चाहे गूगल में भी तलाश लो, नहीं युगल ऐसे मिलेंगे।
कलयुग के दल दल में भी कहां कमल खिलेंगे, कहां कमल खिलेंगे। तलाश लो नहीं उगल ऐसे मिलेंगे, चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं उगल ऐसे मिलेंगे। कलयुग के दल दल में भी, कलयुग के दल दल में भी ऐसे कमल खिलेंगे, चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं उगल ऐसे मिलेंगे। चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं युगल मूर्त लक्ष्मी नारायण आए, कोई गजाने सबके बहाने भट्टी करने आए। डायमंड हॉल में बैठे बैठे डायमंड चमक रहे हैं, ज्ञान सूर्य की रोशनी में दर्पण दमक रहे हैं। दुनिया कहती आज कबार साथ नहीं रह सकते, हम दुनिया से पूछे क्यों आज कबार सो रहते।
फरिश्ते नहीं नहीं बनते फरिश्ते नहीं नहीं जैसे फरिश्ते आए
चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं गूगल ऐसे मिलेंगे चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं गूगल ऐसे मिलेंगे गुप्त देश में युगल मूर्त लक्ष्मी नारायण आए कोई क्या जाने सबके बहाने भक्ति करने आए अपना अभिनंदन करें आप
माया नगरी में रह करके माया को ललकारा नाम प्रभु का किया जगत में काम शत्रु को मारा आपने पवित्रता प्रत्यक्षता लाएगी संतों ऋषियों को भी ये चरणों में छाएगी
परमात्मा ज्ञान और शक्ति का
परमात्मा ज्ञान और शक्ति का
है प्रमाण दिखलाए चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं गूगल ऐसे मिलेंगे चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं गूगल ऐसे मिलेंगे गुप्त वेश में युगल मूर्त लक्ष्मी नारायण आए कोई क्या जाने सबके बहाने भक्ति करने आए अर्पण हो के समर्पण ऐसे घर में रहते कर्ण करावन हार है बाबा 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 कहते
समय है कम और तेज है चलना समाधान बन जाना रहा सहा सब स्वाहा करके संपूर्ण बन जाना
मम्मा बाबा दादिया
मम्मा बाबा दादिया सब स्नेह पुष्प बरसाए
चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं गूगल ऐसे मिलेंगे चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं गूगल ऐसे मिलेंगे चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं गूगल ऐसे मिलेंगे कलयुग के दलदल में भी कलयुग के दलदल में भी ऐसे कमल खिलेंगे चाहे गूगल में भी तलाश लो नहीं गूगल ऐसे मिलेंगे चाहे गूगल ऐसे मिलेंगे गुप्त वेश में युगल मूर्त लक्ष्मी नारायण आए कोई क्या जाने सबके बहाने भक्ति करने आए भक्ति करने आए भक्ति करने आए
भक्ति करने आए बहुत 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 धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप ने आप सभी को साज और आवाज से स्वागत किया यज्ञ के आदि रत्नों में अनमोल रतन परम श्रद्धेय आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी जो बाबा की शान है सारे ब्राह्मण परिवार की आप जान हो और ज्ञान रत्नों की आप खान हो आपका जीवन आज भी उमंग उत्साह से भरा हुआ और सभी को उमंग उत्साह दिलाते दिलाते दादी जी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं तो हमारी प्यारी दादी जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते, अभिवादन करते, अभिनंदन करते हैं। अभी दादी जी हम सभी को वरदानों से, अपने वरदानी बोल से सजाएंगे। आदरणीय दादी जी,
ॐ शांति, ॐ शांति, ॐ शांति। आज आप सभी युगल मुहूर्त विशेष, पता है ना किस लिए, किस लिए बट्टी करने आए हैं। बट्टी हम किसको कहते हैं? साधारण रीति से बट्टी, जब ये वस्त्र मैले होते हैं तो भेजते हैं धोबी के पास, है ना ऐसा, और वो भट्टी में मैले कपड़े डाल के जब गर्म पानी में उसकी मैल निकल जाती है तब फिर निकाल करके सफेद पानी में साफ करके और उसको उज्जवल करके फिर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो हम सब के लिए ये भट्टी, भले अभी तो आप सभी पहुंचे हैं और इस भट्टी के अंदर रोज आपको लक्ष्मी मिलता रहेगा। वैसे तो आप सब जानते हैं हम बाबा के पास किस लिए पहुंचे हैं और बाबा ने हमें सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज और उसके पहले स्वयं की पहचान, बाप की पहचान के साथ पूरा पूरा हम आत्माओं का संबंध बाप से जुटा रहे, इसलिए यह हमें शिक्षा मिली कि हम आत्मा हैं। भले ये हर एक जानता है शरीर के अंदर आत्मा है, परंतु जब हम शरीर में आए तो नाम हमारा शरीर पर पड़ा और उसी नाम से हम इस सृष्टि पर अपना अपना कार्य करते रहे और शरीर के होते कार्य तो वही होगा, एक तो शरीर की पालना, साथ में फिर ये जो हर एक अपने घर गृहस्थ में रहते हैं उसकी पालना आद आद। परंतु बाबा ने जब हमें भट्टी में बिठाया तो भट्टी के अंदर ये हमारा अभ्यास, कैसे हम अपन को आत्मा समझ और आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुटा रहे। जो हम आत्माएं भी अविनाशी अनादि हैं और हम आत्माओं के पिता परमात्मा भी अनादि अविनाशी हैं। जब ये शिक्षा मिली, इसी शिक्षा से बाबा ने जो हमें तपस्या कराई, शुरू शुरू में शायद आप लोगों ने कुछ कुछ हिस्ट्रियां सुनी होंगी, शुरू में जब बाबा ने हमें तपस्या कराई तो तपस्या में हम चार चार दिन पांच पांच दिन बिल्कुल मौन में रहते थे और वह हमारी बट्टी थी जिस बट्टी के अंदर हम बिल्कुल मौन में, ऐसे नहीं कर्म काम करते रहते थे परंतु कर्म करते भी मुख का आवाज नहीं और सदा मन के अंदर वह स्मृति जागृत रहे कि मैं शरीर नहीं परंतु आत्मा हूँ। यह भल सब जानते हैं, आत्मा ही बोलती है, आत्मा शरीर में है तो शरीर के कर्म इंद्रियों द्वारा बोलती है, मुख बोलता है, आंखें देखती है, हाथ पांव अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी जो बात हमें भूल गई है, मानते हैं हम परमात्मा की संतान है लेकिन कैसे मैं उनकी संतान हूँ, इस सृष्टि मंच पर बाबा ने मुझे किस लिए भेजा है, क्या क्या मुझे करना है, इसकी पूरी पहचान नहीं। केवल जिस परिवार में रहे, जिस माँ बाप के साथ रहे, उन्हीं से संबंध और उनकी आज्ञा पर चल करके हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन बाप ने हमें शिक्षा दी, वास्तव में शरीर को चलाने वाली मैं अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ, और सचमुच आप विश्वास करें तो हम यह आत्मा का लेसन भले मुख से जास्ती नहीं बोलते थे परंतु बट्टी हम उसको कहते जिसके अंदर 24 घंटा, भले रात को शरीर को आराम तो देते थे परंतु वो भी उसके बाद उठने के बाद 4 बजे उठने के बाद, फिर सुबह को तो हम 4-4 घंटे योग में बैठते थे, फिर नाश्ते के बाद क्लास वगैरह के बाद नाश्ते के बाद फिर 4 घंटे योग में। लेकिन उस समय अभी के बट्टी में हम नाश्ता करते हैं, खाते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु हम लोगों ने जो यज्ञ में बट्टी की तो जब बट्टी में बैठते थे तो भोजन नहीं करते थे और एक साथ 4-4 घंटे 5-5 घंटे योग में बैठते थे, तो सारा दिन पूरे 4 दिन 3 या 4 दिन इस प्रकार फिर दिन में भोजन करके थोड़ा आराम करेंगे, फिर आराम के बाद योग में, और योग में भी हम बाहर नहीं निकलेंगे, योग के बाद भोजन पर भी नहीं जाते थे वो भी, और हम भोजन नहीं करते थे। शुरू में जो बाबा ने हमें अभ्यास कराया उसमें हम भोजन नहीं करते थे, परंतु सिंपल फल या दूध ऐसे कुछ तीनों टाइम पान करते थे। और उस समय योग हमारा ऐसा लग जाता था जो सचमुच बाबा मम्मा जब आके चक्कर लगाते थे, केवल उस समय आंखें ऊपर करके बाबा को देखते थे, बाबा भी उसमें बोलते नहीं, बिल्कुल सारा दिन बिल्कुल मौन, और केवल अपने अंदर ये अभ्यास पक्का, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। भले दिन प्रतिदिन ज्ञान मिलता गया तो कर्मों का हिसाब तो उसका तो संस्कार बनेंगे, लेकिन ये सा अभ्यास ने जो भी पुराने संस्कार वो बदलते गए, और हमारे अंदर जो जो बाबा समझाते गए उसका ही मनन चिंतन एकांत में बैठ के वो करते रहे, जिससे स्थिति ऐसी बनी रही जैसे शरीर के द्वारा मैं आत्मा कर्म कराती हूँ, ऐसी भावना सदा अंदर में जागृत रहती रही, और उसी भावना से भले हम काम संगठन में भी करते थे लेकिन शुरू में और संगठन में भी एक दो को बीच बीच में यही याद दिलाते थे, हे आत्मा याद है हम इस शरीर के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा ऐसा शुरू का बाबा ने अनुभव कराते हुए आज हम तो बचपन से लेकर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर जैसे कि हमारी जन्म से ही ऐसी जीवन बन गई जो सदा स्वयं को आत्मा समझ हम कर्म करते रहें, चाहे किससे बोलें चाहे किसको देखें, लेकिन अंदर में यह स्मृति जागृत रहे, जिससे फायदा ये हुआ कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार वो आगे नहीं बढ़ा। जैसे बाबा शिक्षा देते गए उन्हीं बातों का मनन चिंतन और वो ही कर्तव्य करते हम आगे बढ़ते गए, उसी को हम बट्टी कहते हैं, और वो ही बट्टी शब्द अभी भी हम यूज करते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन क्योंकि बाबा के ये भी महावाक्य है, घर ग्रस्त में रहते हुए हमें स्मृति में रहकर अपने संस्कारों को ऐसा बनाना है। तो अभी हम सब वही अपने संस्कार अंदर में अपने को हर घड़ी याद दिलाते रहें, भले कर्म करते रहें, अब भी हमें याद है वही हमारा अभ्यास। कुछ भी कर्म करते हैं और कर्म पूरा हो जाने के बाद वो जो थोड़ी भी साइलेंस मिलती है उसी में वो स्मृति जागृत रहे, और उस स्मृति के साथ जब कर्म में आते हैं तो भले कुछ ऊंचाई नीचाई तो आती रहेंगी, क्योंकि पता है अनेक जन्मों के संस्कार हमें इस एक जन्म के अंदर जितना भी बाकी समय है उसके अंदर हमें इन संस्कारों को परिवर्तन करके वही संस्कार बनाने हैं जो हमारी सर्व के प्रति दृष्टि वही बनी रहे कि हम एक पिता परमात्मा की संतान, हम सब आत्माएं आपस में मिलकर अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाएं जिससे मिलें आत्मक भावनाओं से मिलें, और उन्हीं भावनाओं से जो हमें बाप की शिक्षा मिली है उन शिक्षाओं से उन्हों को भी लाभान्वित करें, वे भी उसका लाभ लेकर अपनी जीवन को ऐसा सुंदर, ऐसा विकारों रहित, मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार जिन्हों के कारण हमारे कर्मों का खाता जो मिक्स हो गया है वो बदल करके ऐसे हमारे श्रेष्ठ कर्म बोल में मधुरता, दृष्टि में रूहानियत, और सर्व के प्रति जब हम एक पिता की संतान आपस में भाई बहन हो गए शरीर के नाते से, उसी रीति हमारा आपस में ईश्वरी स्नेह बना रहे तो हमारे कर्मों में भी बाप की शिक्षाओं के अनुसार हम कर्म करते रहेंगे, और सर्व को जो हमें बाप की शिक्षाएं मिली है वह शिक्षाएं उन्हों को याद दिलाकर उन्हों को भी ये स्मृति जागृत करके और अपनी स्मृति में स्थित करके, क्योंकि अब हम जानते हैं ये समय कौन सा है, कौन सा समय है, ये सृष्टि का चक्कर चार युगों में चलता है, जानते हैं ना, तो युग बदलते जाएंगे। अगर युग भी किस आधार से बदलते हैं, हम आत्माएं जैसे जैसे कर्म करती हैं ऐसा ही संगठन, तो समय भी उसी प्रकार सत्ययुग जहाँ सतो प्रधान हम आत्माएं उस समय सतो प्रधान सतो गुणी संस्कारों वाली, और उस समय कोई बात की कमी नहीं, जैसे हमारे गुण वैसा ही हमें ऐसा सारा सारा परिवार। इसी प्रकार बाबा ने फिर देखो ड्रामा के अंदर जब कलयुग अंत के समय में भगवान के महावाक्य जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, मैं गुप्त वेश में आकर के स्वयं का परिचय देता हूँ और फिर से स्वर्ग की दुनिया जहाँ दुख शांति का नाम निशान नहीं है, तो हमें याद रहे बाबा ने हमें इसके लिए निमित्त बनाया है, इसलिए वह अनुभव हमें अपने जीवन के अंदर भी करना है और अपनी जीवन इस समय भी ऐसी हमारी बनी रहे जो भल हरेक अपने अपने स्वभाव संस्कारों के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन जब हमें बाप से ये पहचान मिली है हम मानते हैं हम सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे, बाप का भी हमें परिचय है, बाप के कार्य में हम लगे हुए हैं, जबकि इस दुनिया का परिवर्तन करके इसी संसार को पलटा कर और स्वर्ग की दुनिया जहाँ ना दुख का नाम निशान नहीं, वैर भाव का नाम निशान नहीं, सदा सब सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हम इन्हीं बातों को याद करते बाबा ने जो हमें ड्रामा की पूरी नॉलेज दी है, अब कलयुग का अंत है, अब फिर से आद आनी है, लेकिन आद के लिए परमात्मा पिता ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है कि हम अब अपनी जीवन में ऐसा एग्जाम्पल बनकर कर्म करें, जिन्हों को भी समझाएं, वो हमारी जीवन से वह अनुभव करे और वह भी स्वयं को ऐसी बाबा की शिक्षाओं से सजा कर ऐसी जीवन बनाते रहें। तो आप सब युगल मूरत आज बट्टी में बैठे हैं, हरेक अपने से पूछे कि हमने अपने अंदर यह शिक्षाओं को इतना धारण कर ऐसी हमारी दृष्टि, ऐसी हमारी सबके प्रति वृत्ति कि हम सब एक बाप के बच्चे, ये सारा ही हम एक परिवार है, भले शरीर के नाते से हम भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, हरेक अपने अपने अनुसार जिसकी जैसी जैसा जन्म जैसे कर्म, माना कर्म का मतलब जो उनका व्यवहार उसी में चलते हुए, लेकिन हर कर्म में शुद्धि रहे, हमारी वृत्ति के अंदर सर्व के प्रति शुभ भावनाएं बनी रहे, किसी का कैसा भी संस्कार है हमें उनके प्रति भी यह प्यार की दृष्टि कि इसको भी हम बाप की शिक्षाओं से परिचित करके और उन स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति अपने में जागृत कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब, मैं समझती हूँ मैं जा रही थी तो वही होंगी जो अलग अलग सेंटर्स पर ये शिक्षाएं धारण कर अपनी जीवन को ऐसा बनाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। और अभी हम जानते हैं कि बरोबर समय काफी बन चल चुका है, युग भी परिवर्तन होने के समय पर पहुंच रहा है। अब जब कलयुग बदल कर सत्युग आने वाला है, बाप ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है कि हम बाप का परिचय सबको देते हुए अपनी जीवन भी ऐसी शुद्ध वृत्ति में, दृष्टि में रूहान्यत वृत्ति के अंदर स्नेह भाव और कर्मों में वह शुद्धता, जीवन के अंदर वह पवित्रता बनी रहे। इन्हीं बातों पर हम सदा ध्यान देकर अपने को ऐसे बनाते जाएंगे। समय कभी भी बदल जाएगा और यह हम देखते रहेंगे। जो अंत समय जिसको विनाश का समय कहते हैं, यह बहुत बड़ा परिवर्तन का समय आने वाला है, जो देखने में भी इतनी हिम्मत इतनी शक्ति जो दिखाते हैं। अंत में हम ऊंची ऊंची पहाड़ी पर तो ऐसे नहीं, ये स्थूल की बात है, परंतु ये सारी अपनी वृत्ति और अपनी दृष्टि बल्कि अपने जीवन का मिसाल हर कर्म करते हमें स्मृति रहे और हम अपने से सब बुराइयों को दूर करके अपन को स्वर्ग में आने के लायक संपूर्ण निर्विकारी बनाकर अपनी जीवन में सदा खुश नमा रहें और सर्व को खुशियां देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबकी युगलों की बट्टी है। इस बट्टी को तो हम बहुत महान मानते हैं, जबकि वो साथ में रहते उन्हीं संस्कारों से हम आपस में एक बाप के बच्चे और उस पवित्रता के नाते से गुणों में पवित्रता, वाणी में शुद्धता और सर्व संबंधों में ऐसी पवित्रता और शुद्धता से मीठी दृष्टि से हम मीठे बोल से अपना बाकी समय बिताते रहें, सर्व को बाप का परिचय देते, बाप से संबंध जुटाकर बाप का बनाकर उनके जीवन में भी ऐसा ही परिवर्तन लाएं, जो वे भी स्वर्ग में आने के लायक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं समझती हूँ मेजॉरिटी तो वही होंगी जो अलग अलग सेंटर्स पर जाकर ये सब बातें सुनकर अपनी जीवन को ऐसा बनाते रहते होंगे। और भी हम स्वयं पर अटेंशन रख करके, स्वयं का सैंपल बन करके बाप के इस कार्य को संपन्न करने में अपना पूरा पूरा योगदान देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी संख्या में आज युगलों की भट्टी है, भट्टी के अंदर हम इस बात को पक्का करके अपने जीवन में ये सब बातें अपने आप से प्रॉमिस करें, स्वयं समझाएं। अभी तो हमें नॉलेज बहुत मिल चुकी है, बहुत समय से आप भी अभ्यास करने वाले होंगे और जरूर अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करते, औरों के जीवन भी ऐसे बनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको देखकर हमें बड़ी खुशी है कि आप सभी बाबा के इन बातों को समझकर अपनी जीवन ऐसी पवित्र और सर्व के संबंध में इतना स्नेह संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। दादी जी ने हम सभी को भरपूर किया। अभी खास पट्टी के लिए घाटकोपर मुंबई से यज्ञ का बहुमूल्य रतन आदरणीय नलिनी दीदी पधारे हैं, तो इसी शुभ अवसर पर हम सभी के प्रति अपनी शुभ भावनाएं रखेंगे। आदरणीय नलिनी दीदी।
ओम शांति। आप सभी बहुत समय से यहाँ बैठे हो, इसलिए आपका अधिक समय तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन आज हमारी सभा में हमारी परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी विराजमान है और आप सभी युगल मूरत जो कि एक संसार के अंदर बेमिसाल मिसाल बने हो, जो तो आपने हमारे मधुरवाणी ग्रुप ने जो गीत गाया आप लोगों के प्रति, उसमें आपकी जो महिमा उन्होंने बताई कि किस प्रकार आप सभी के लिए एक ऐसे मिसाल हो कि असंभव बात को भी आप लोगों ने संभव करके दिखा दी है। इससे बड़ी तो और प्रत्यक्षता बाप की क्या हो सकती है। तो इसीलिए अभी समय आपका अधिक नहीं लूंगी, परंतु बीना बहन का आग्रह था कि आप 2-5 मिनट भी कुछ जरूर कहें, तो एक कहानी आप सभी को मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कहानी सुन करके थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाते हैं और कहानी हम सभी के जीवन से संबंधित भी है। और वो कहानी है कि एक चोर था, वो चोरी करने के लिए नित्य प्रति जाता था और चोरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। बहुत बड़ा चोर नहीं था, इसलिए कभी वो ठीक चोरी कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। और वो अपने घर से जिस भी शहर में चोरी करने जाता था तो उसको बीच में जंगल से गुजरना पड़ता था। तो इसी प्रकार रोज के नियम प्रमाण वो चोरी करने निकला। चोरी करने निकला तो सही, लेकिन उसको कुछ भी उस दिन प्राप्त नहीं हुआ। तो बहुत उसने कोशिश की, यहाँ वहाँ खूब उसने माथा मारा, लेकिन कहीं से भी वो कुछ भी ले नहीं पाया। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। परिवार इंतजार करता होगा, पत्नी बच्चे सब इंतजार में बैठे होंगे और मैं कुछ भी आज नहीं कमाई लेकर के जा रहा हूँ, तो उनको कितनी अंदर में चिंता होती होगी। तो इसीलिए वो थका हारा सोचों में चलने लगा और आया आखिर जंगल के उस प्रदेश में। जब जंगल से गुजरने लगा तो वो काफी थका हुआ था, सोचा कि आज कुछ मिला भी नहीं, आज मेरा भाग्य भी अच्छा नहीं और मेरा जीवन भी ऐसा है। ऐसे कई व्यर्थ संकल्पों से गुजरता गया और भी थकता गया। आखिर इतना थका कि उसे लगा कि अब कहीं मुझे विश्राम करना चाहिए, तो वो विश्राम के लिए स्थान ढूंढने लगा। लेकिन कहीं आजू बाजू कोई स्थान नजर नहीं आया, तब जाकर के एक स्थान नजर आया और वो स्थान पर उसके कदम तेज गति से आगे बढ़ने लगे। जैसे मंजिल आती है ना, तो फिर हमारे कदम भी तेज गति से बढ़ने लगते हैं। तो वो अभी जाकर जल्दी जल्दी वहां पहुंचा तो वो जो स्थान था वो शिवालय था, शिवजी का मंदिर था। तो वो वहां जाकर के उस मंदिर में बैठा तो खंभे के सहारे पर सिर टिका कर सोचने लगा, अपने भाग्य को कोसने लगा, खुद को कोसने लगा और संसार को भी कोसने लगा। तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसे सोचते सोचते उसका ध्यान अचानक जलाधरी पर गया, जो जलाधरी शिवजी के लिंग के ऊपर लगी हुई थी, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। वो एकदम देख करके अति प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, मेरा तो आज भाग्य बन गया, आज का तो क्या, लेकिन मेरा कई दिनों का मुझे खजाना मिल गया। क्यों? क्योंकि वो जो जलाधरी थी वो सोने की थी। तो उसने वो जो सोने की जलाधरी देखी तो उसको अंदर में आया कि चलो आज तो यही मुझे चुरा लेना है। तो वो गया जलाधरी को हाथ लगाने, परंतु जलाधरी उसके हाथ में नहीं आई क्योंकि वो ऊंचाई पर लगी हुई थी। फिर उसने थोड़ा जंप मार के उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका हाथ उस जलाधरी तक नहीं पहुंचा। फिर उसने सोचा कि अभी इसको हाथ में लाने के लिए, पकड़ने के लिए मुझे कहां किसी चीज पर चढ़ना होगा, चढ़ूंगा नहीं तो मुझे जलाधरी नहीं मिलेगी। तो आजू बाजू बहुत कुछ देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर एक छोटा सा कुछ साधन मिल गया, वो लेकर के उस पर चढ़ के उसने जलाधरी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु देखा कि तो भी वो उस जलाधरी तक नहीं पहुंचा। अब वो सोचने लगा कि इतनी अच्छी सोने की जलाधरी और मेरे सामने है, मेरे पास है, और मैं अभी कैसे करके इसको मैं अपने हस्तगत करूं। आखिर उसको अंदर में ये विचार आया कि मैं इस शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ जाऊं। वो शिवलिंग क्या है, किसकी प्रतिमा है, ये कुछ भी जानता नहीं था। उसका तो मतलब किससे था, जलाधरी को चुराने से था। तो इसीलिए वो उस पर चढ़ करके शिवलिंग के ऊपर जैसे ही अपना कदम रखने गया तो इतने में क्या हुआ, क्या हुआ होगा आप बताइए। शिवजी प्रसन्न हो गए, भोलानाथ है ना, कहते हैं भोला बाबा, तो भोलानाथ बाबा उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो एकदम रोशनी 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 और उसको बोला ठहरो, तो उसका कदम उसने नीचे कर दिया। इतने में देखा तो उस रोशनी से आवाज गूंजने लगी, बोला बोल बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ। तो वो एकदम हैरान हो गया, तो बोला फिर से बोला मांगो तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं तुमको दूं। तो फिर उसने कहा कि मैं तो एक चोर हूँ और मैं रोज चोरी करके अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। आज मैंने ये देखा तो मैं उसको लेने के लिए चढ़ा था आपके ऊपर। तो भोलानाथ ने कहा बस इतनी सी बात? तो उसको बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं दी और बोला ले, अविनाशी रूप से तेरा ये भाग्य बन गया। अब इस पर से हमें ये सोचना है कि उसने तो बिना जाने, बिना माने, बिना सोचे, बिना समझे, और उसने शिव के ऊपर, जिसको एक पत्थर समझकर या एक साधन समझकर चढ़ने की कोशिश की, और प्रभु उसके ऊपर इसलिए प्रसन्न हुए कि वो उनके ऊपर चढ़ने की हिम्मत की उसने प्रभु के ऊपर। तो यहाँ तो हम सभी बच्चे बाबा को पहले मानते थे, भक्ति मार्ग में पूजते थे, परंतु स्वयं शिव पिता ने हम बच्चों को यहाँ बुलाकर या फिर अपने बच्चों के द्वारा हमें संदेश देकर और हमें अपना बनाया। हमें पहले ज्ञान मिला, जानकारी मिली, हमारा स्नेह पूर्ण संबंध हमारे बाबा से हमारा जुटा, सिर्फ एक ही संबंध नहीं लेकिन सर्व संबंध हमारे बाबा से जुट गए। और फिर हम बाबा के जिस घड़ी हमने यह दृढ़ संकल्प किया कि बाबा तू मेरा और मैं तेरा या मैं तेरी, जैसे ही हमने यह संकल्प किया स्नेह पूर्ण संबंध का, त्यों ही हम जैसे बाबा के ऊपर समर्पित हो गए। तो स्नेह जो होता है वो समर्पण मांगता है, स्नेह समर्पण की निशानी है। तो समर्पणता हमारे स्नेह को बरकरार करती है। तो इसीलिए हमें भी ये बाबा ने ऐसा स्नेह करना सिखलाया कि हम उस स्नेह में बाबा को कहा बाबा तू मेरा और मैं तेरा। तो हमारा यह जो समर्पण होना, यानी तू मेरा मैं तेरा कहकर हम जो बाबा के ऊपर चढ़ गए यानी समर्पित हुए, तो बाबा भी इतने हम बच्चों के ऊपर प्रसन्न हुए जो हमें कितने जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, एक जन्म का, हाँ कि ना, नहीं, 5-10 जन्म का, नहीं, 15-20 जन्म का, नहीं, लेकिन पूरे 21 जन्म। लेकिन अनुभव ये कहता है कि 21 जन्म भी नहीं, लेकिन कल्प का 3/4 टाइम हम बच्चों को बाप से अविनाशी सुख शांति और पवित्रता का वर्षा मिलता है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें चोर नहीं बने हम। अब यहाँ आए हो मधुबन में, ये ज्ञान मान सरोवर है, मधुबन की तो जितनी महिमा करें उतनी कम है। ये हमारे परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना के कार्य को करने की ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि बनाई। तो ये कर्म भूमि हमारे भी कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है। हम यहाँ आकर के श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हैं। तो हमें अभी क्या करना होगा? भट्टी में आए हो, दादी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमें कैसे यहाँ तपस्या करनी है, स्वयं की चेकिंग करनी है, स्वयं में चेंज लाना है, सब कुछ हम करेंगे, परंतु साथ साथ चोरी भी करेंगे। कौन सी चोरी करेंगे? ऐसे नहीं किसी का कपड़ा चुराया, किसी की घड़ी चुराई, किसी के जूते चुरा लिए, नहीं। हम यहाँ पर गुण चोर बनेंगे। हम सब इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हर एक के पास अपना अपना गुण तो है कि नहीं है, है? हर एक के अलग अलग गुण, अलग अलग विशेषताएं, तो हम ऐसे गुण चोर बनेंगे, विशेषताओं को चुराने वाले बनेंगे और फिर खूब अपनी झोली यहाँ पर चेकिंग करके चेंज करके और सर्व से ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, विशेषताओं का खजाना ये सब अपनी झोली में भरेंगे, तपस्या करेंगे और इस तपस्या से फिर हम क्या करेंगे, स्वयं को ऐसा चमकाएंगे, बाबा को नैनों में, दिल में बाबा, नैनों में बाबा, बस हम बाबा की याद में इतना रहेंगे और बाबा की याद में सेवा करेंगे तो क्या होगा, बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया, अब बाबा को कौन प्रत्यक्ष करेगा, कौन प्रत्यक्ष करेगा बताओ, जरा बताओ ऐसे कि हम बच्चे कौन प्रत्यक्ष करेगा, आवाज थोड़ी कम आ रही है, कौन प्रत्यक्ष करेगा बाबा को, हम बच्चे। हाँ तो आप युगल मुहूर्त तो कर ही रहे हो परंतु अभी और तपस्या करके और हम बच्चों को अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है और आप ये प्रत्यक्ष अवश्य करेंगे करेंगे और करके ही छोड़ेंगे, ऐसी हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है और हमारी दादी दीदियों की छत्र छाया में और उनकी जो भी शक्तियाँ, उनका तप का बल जिसका फल हम लोग खा रहे हैं, हाँ बाबा कहते हैं ना मुरली में, तो इसीलिए ये जो आज हम फल खा रहे हैं सभी आराम से मधुबन में आए हैं, बाबा ने निमंत्रण दिया और पहुँचे, हाँ वाह मेरा भाग्य, हाँ किसने निमंत्रण दिया, मधुबन माना बाप दादा, हाँ तो सभी को लगता है कि वाह मेरा भाग्य, हाँ कहो अपने मुख से कि वाह मेरा भाग्य वाह, फिर वाह मैं वाह, हाँ बाबा कहते हैं ना वाह मैं, तो बाबा ने देखो हमारा भाग्य बना दिया, तो आप सभी इसी भाग्य को सदा अविनाशी बना के रखेंगे, ऐसी शुभकामना शुभ भावना। ओम शांति, ओम शांति। अभी थोड़ा परिचय दादी जी को हम दे देंगे, तो जिस जोन का मैं नाम बोलूंगी वहां से आए हुए भाई बहने हाथ हिला करके खड़े हो जाएंगे, आगरा से आए हुए भाई बहने कृपया खड़े हो जाएंगे और थोड़ा हाथ हिलाओ ताकि दादी को मालूम पड़े, आगरा बैठ जाए। आंध्र प्रदेश से आए हुए भाई बहने आंध्र प्रदेश हाथ हिला करके, भोपाल जोन से बैठो, भोपाल जोन से आए हुए सभी भाई बहने खड़े हो जाएंगे, भोपाल जोन हाथ हिला करके दादी को बताएंगे। दिल्ली और दिल्ली के कमरे बैठ जाओ, दिल्ली और दिल्ली के कमरे सभी भाई बहने खड़े हो जाएंगे, दिल्ली के बैठे, दिल्ली के बाद ईस्टर्न जोन बंगाल बिहार आसाम उड़ीसा वहां से आए हुए भाई बहने बैठो, गुजरात से आए हुए भाई बहने खड़े हो जाएंगे, गुजरात हाथ हिलाएंगे बैठो, इंदौर आरती बहन और इंदौर कमला बहन उसके कनेक्शन से आए हुए भाई बहने बैठ जाए, कर्नाटक जोन से आए हुए भाई बहने खड़े हो जाएंगे, कर्नाटक जोन बैठे, महाराष्ट्र जोन से महाराष्ट्र मुंबई के अलावा महाराष्ट्र जोन बैठो,
मुंबई, मुंबई से आए हुए भाई बहने खड़े हो जाएंगे। नेपाल बैठ जाए। नेपाल से आए हुए भाई बहने बैठे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल, वहां से आए हुए भाई बहने हाँ बैठे। राजस्थान जोन से आए हुए सभी भाई बहने खड़े हो जाएंगे। राजस्थान जोन बैठो। तमिलनाडु से आए हुए भाई बहने तमिलनाडु। और यूपी से आए हुए भाई बहने खड़े हो जाएंगे। यूपी बैठे।
I'm not afraid.